समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे। आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
गुड मॉर्निंग देवेंद्र। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। दिस इज आज सवेरे एंड वेल यस, यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। वेल टुडे वी फर्स्ट गिव यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, ऑल्सो मेट्रो सिटी updates, then and then some historical information which is related to today. Today it's 11th of January 2026. Let's begin with the headlines first, Devendra.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के तीन दिन के दौरे में आज ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे। वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 वर्ष और आजादी के बाद 1951 में इसके पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री आज मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। वे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सोमनाथ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे राजकोट में सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के लिए आयोजित दो दिन के जीवंत गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य नवाचारियों, उद्यमियों, निवेशकों, स्टार्टअप उद्यमों, वैश्विक साझेदारों और सरकार को एक साथ एक मंच पर लाना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान 1500 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। राजकोट में खरीदार और विक्रेता बैठक के दौरान 1800 से अधिक व्यापार बैठकें होनी है। सम्मेलन में अमरीका, यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया सहित 16 से अधिक देशों के अभियांत्रिकी, कृषि और कपड़ा क्षेत्र से संबंधित 110 खरीदार भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री राजकोट से अहमदाबाद जाएंगे और वहां सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन तक अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के शेष कार्य का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले कल शाम प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने ओंकार मंत्र पाठ में भाग लिया और मंदिर परिसर में आयोजित ड्रोन शो देखा। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन ऐतिहासिक समारोहों में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं।
सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकार ममलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ महादेव का मंदिर इतिहास, अटूट विश्वास और अजेय भावना की एक अनूठी गाथा है। सदियों तक यह पावन स्थल विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। विशेष रूप में सन 1026 में जब महमूद गजनवी ने इसकी संपत्ति लूटी और गर्भगृह को नष्ट कर दिया। भीमदेव प्रथम जैसे स्थानीय राजाओं द्वारा किए गए पुनर्निर्माण के प्रयासों के बावजूद 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया गया। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पूजा की परंपरा को जीवित रखने के लिए मुख्य मंदिर के समीप ही एक नए मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के आधुनिक इतिहास में निर्णायक मोड़ भारत की आजादी के साथ आया। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रभासपाटन के खंडरों का दौरा किया और मंदिर को उसके प्राचीन गौरव के साथ फिर से बनाने का ऐतिहासिक संकल्प किया। उनके मार्गदर्शन में एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान चालुक्य शैली के मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया। विकास का यह सफर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है, जिसमें समुद्र दर्शन पथ, पर्यटक सुविधा केंद्र और एक नई म्यूजियम गैलरी जैसी सुविधाएं शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सोमनाथ भारत की अटूट शक्ति का एक मजबूत प्रतीक बना रहे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। ये आंकड़ा पिछले वर्ष 3,56,00,000 के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को पार कर चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ये पहल वार्षिक संवाद कार्यक्रम से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का तनाव दूर करने का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का लाभ उठाने को कहा। इस वर्ष के लिए पंजीकरण 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। पंजीकरण MyGOV पोर्टल पर कराया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भाग लेने वाले विद्यार्थियों की भारी संख्या, कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता तथा परीक्षा का तनाव दूर करने और शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में इसकी कारगर भूमिका का प्रमाण है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पढ़ाई लिखाई के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के बारे में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलता है। शिक्षा मंत्रालय ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने को कहा है।
Union Home Minister Amit Shah has said that India can become self-reliant only by embracing mantra of Swadeshi and Swabhasha. Addressing a function at Jodhpur in Rajasthan, he urged people to make and use local products and to converse in their mother tongue at home. Mr. Shah said that the language is key to preserving any society, culture and religion. He said while any language can be learnt or spoken as required to progress in the world, only local languages should be used for conversation with children at home, as it will help strengthen their connection with their roots.
मेरा सभी लोगों से आग्रह है।
आई रिक्वेस्ट everyone that as much as possible we should insist on using indigenous things. Every trader should decide that if there are things made in my country then I will trade only those. This indigenous is the other side of self-reliance and along with indigenous my request to many young friends and parents is that speak whatever language you have to speak for progress in the world, learn whatever language you have to learn. There is no objection to speaking and learning as many languages as you want, but speak with children at home only मारवाड़ी एंड हिंदी।
अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए।
So, listeners, two new India Post services have been announced by Union Minister for Communications, Jyotiraditya Sindhia. First one, it's Speed Post 24. Second one, Speed Post 48. This will ensure delivery within 24 and 48 hours. So, this announcement made through at a program at Pichore in Shivpuri district of Madhya Pradesh. This is being considered an important step towards the modernization of postal services. Speaking on the occasion, Mr. Sindhia said that Speed Post 24 and Speed Post 48 will set a new standard of punctual, reliable and fast delivery.
जी, विमेंस प्रीमियर लीग WML में दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कल नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन के बड़े अंतर से हराकर प्रतियोगिता में पहली जीत दर्ज की। मुंबई के लिए यह जीत काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे शुरुआती मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 75 रन और नैट स्काइवर ब्रंट ने 70 रन की शानदार पारी खेली। 196 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 145 रन पर सिमट गई। मुंबई इंडियंस के लिए निकोला कैरी और अमेलिया केर ने 3-3 विकेट लिए। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से नवी मुंबई में खेला जाएगा। और शगुन, भारतीय महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद महिला क्रिकेट में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है।
एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। एंड अनदर क्रिकेट अपडेट आई हैव हियर, इंडिया इज ऑल सेट टू स्टार्ट देयर, दिस इज फॉर मेंस क्रिकेट, इंडिया इज ऑल सेट टू स्टार्ट देयर 2026 सीजन टुडे as they face New Zealand in the first match of the 3-match ODI series in Vadodara, Gujarat. So the match will start at 1:30 p.m. and this will be the last ODI series for India, very crucial, before they head into full T20 mode with the T20 World Cup 2026 and IPL 2026 on the horizon. The second ODI, will be played at Niranjan Shah Stadium in Rajkot. This will happen on January 14. Third and final match is set to take place at Holkar Stadium in Indore on January 18.
तो ये थी देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें, कुछ खेल जगत की खबरें। और अब हम रुख करते हैं आज सवेरे में महानगरों की तरफ और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या समाचार हैं शगुन के पास।
Yes, Devendra, beginning with Chennai, this is about IIT Madras setting up new offices in five countries. The countries are the United States, UK, Germany, Dubai and Malaysia. So IITM, Global Research Foundation, will enable deep tech innovators, researchers, startups and industry partners to access global markets, capital and research opportunities. So the initiative also will advance cutting-edge research and consultancy in domains which include data science and AI, quantum computing, cybersecurity and blockchain, space technology and advanced mobility. Well, another update from Chennai. And Tamil Nadu may soon get the first hot air balloon adventure park at Coimbatore. The Tamil Nadu Balloon Adventures has launched the trial phase of the safari in Pollachi. It will be conducted in Madurai and Thiruvannamalai as well. A permanent hot air balloon flight operations hub and aviation park will be established in one of these three places based on the outcome of the trial phase, Coimbatore, Pollachi, Thiruvannamalai. The trial is being held on the campus of Pollachi Institute of Engineering and Technology, and it started on 4th of this month and will conclude on 26th. So Benedict Savio, founder of Tamil Nadu International Balloon Festival, said that the trial phase will evaluate operational feasibility, safety standards and visitor response as well, along with long-term scalability. Devendra, will head now to Bengaluru. The Bangalore Political Action Committee, they tied up with Bengaluru City West Corporation and Resident Welfare Associations to strengthen dialogue between civic administration and citizen groups. The Bangalore Political Action Committee is a non-partisan, non-profit organization working on means to improve governance in the city. The meeting held today discussed means to improve urban governance in Bengaluru. The Resident Welfare Association and civil society organizations, they shared their problems, their concerns, also their suggestions and practical insight on key civic issues. They sought to foster participatory governance, enhance transparency and encourage citizen-led solutions for sustainable urban development. Heading now to Hyderabad. Telangana State Chief Minister A. Revanth Reddy has called upon cardiologists to join hands with the government to prevent heart diseases and reduce avoidable deaths. He laid emphasis on awareness, early intervention and community participation for addressing this issue. So he said preventive medicine was often neglected and educating citizens about healthy lifestyles and emergency response techniques, this can improve survival rates and overall public health. So, addressing the Fellows India 2026 conference held in Hyderabad last evening, the Chief Minister highlighted the need for a united effort involving doctors, government and society to save more people, even as heart ailments continue to claim a large number of lives. So, urging doctors to remain updated with the latest innovations, he demanded, A. Revanth Reddy reminded them not to lose the human touch, which he described as the foundation of compassionate healthcare. Now over to you, Devendra. Well, let's find out what's happening in Delhi, Mumbai, Kolkata.
जी, दिल्ली से बड़ी खबर है. विश्व पुस्तक मेला, जो 53वां विश्व पुस्तक मेला है, उसकी शुरुआत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई है. ये पुस्तक मेला भारत और विश्व भर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का मंच प्रदान कर रहा है. कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मेले का उद्घाटन किया. श्री प्रधान ने कहा कि यह मेला सिर्फ पुस्तकों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि विचारों के जीवंत और लोकतांत्रिक संवाद का एक मंच है. इस वर्ष के विश्व पुस्तक मेले में आगंतुकों को 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक एक साथ देखने को मिल रहे हैं. लगभग 600 साहित्यिक और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित होंगी. इस वर्ष मेले में कतर अतिथि देश है और स्पेन फोकस देश के रूप में भाग ले रहा है. मेले का विशेष आकर्षण भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमत्ता एट 75 विषय पर आधारित प्रदर्शनी है. नौ दिवसीय मेला इस महीने की 18 तारीख तक चलेगा. और ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
पिछले 53 वर्षों में लगातार आयोजित हो रहा यह दिल्ली की पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है. 20 लाख से अधिक पाठकों का और 50 से प्लस देशों की भागीदारी वाला ही आज विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर पुस्तक मेला हो चुका है, जो लेखक, प्रकाशक और पाठकों का सीधा संवाद और सहभागिता के अनूठा मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किया है.
आपने सुना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संबोधन। और शगुन, जिस तरह से आज के समय में डिजिटल गैजेट्स की तरफ हमारे बच्चे आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में पुस्तक प्रदर्शनी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और इस समय छुट्टियां चल रही हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 15 जनवरी तक विंटर वैकेशन को एक्सटेंड करने की सुझाव या निर्देश दिए हैं सर्दियों की स्थिति को देखते हुए। तो ऐसे में छुट्टी का लाभ उठाते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ लेकर जा सकते हैं।
एंड रीडिंग हैज न्यूमरस बेनिफिट्स, राइट? वन ऑफ व्हिच इज बीइंग अ स्ट्रेस बस्टर,
जी,
व्हिच आई थिंक इन माय ओपिनियन, राइट।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह ग्रीन बनाने के लिए केंद्र सरकार को 3000 से अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए कल एक प्रस्ताव भेजा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी के परिवहन विभाग के अंतर्गत इन बसों में 7 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर वाली बसें शामिल हैं, जो दिल्ली वासियों को सक्रिय सड़कों पर संपर्क प्रदान करेंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये बसें दिल्ली के ग्रीन ट्रांजिशन का आधार बनेंगी और शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्णायक साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च तक दिल्ली की सड़कों पर 5000 से अधिक ईवी बसें संचालित हो जाएंगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सदन की विशेषाधिकार हनन को लेकर पंजाब के पुलिस महानिदेशक और जालंधर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। नई दिल्ली में कल एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही के वीडियो फुटेज के आधार पर राज्य में प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में पंजाब पुलिस से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि सदन में गुरुओं का अपमान देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। और रुख करते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार ने शनिवार को धारावी पुनर्विकास परियोजना का विरोध करने के लिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की आलोचना करते हुए उनके रुख को विरोधाभासी और राजनीति से प्रेरित बताया। एक बयान में श्री शेलार ने बताया कि किफायती आवास और मुंबई वासियों के लिए विस्थापन को लेकर विपक्ष के दावे पुनर्विकास के प्रति उनके विरोध से मेल नहीं खाते। मंत्री ने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य किफायती आवास, रोजगार के अवसर, खुले स्थान पर आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। और उन्होंने कहा कि परियोजना का विरोध करना पुनर्विकास, सस्ते घरों और मुंबई वासियों के लिए नौकरियों का विरोध करने के बराबर है। बृहन्मुंबई नगर निगम के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। अतिरिक्त नगर आयुक्त शहर डॉ अश्विनी जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में सभी व्यवस्थाएं पूरी हों। मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी। डॉ अश्विनी जोशी ने यह भी निर्देश दिया कि 13 जनवरी के शाम 5:30 बजे चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होते ही बैनर, झंडे और प्रचार सामग्री तुरंत हटा ली जाए। भीड़ प्रबंधन, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए 4,500 स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। और श्रोताओं, महानगरों की खबरों के बाद हम जान लेते हैं महानगरों के मौसम का हाल,
राइट?
और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई थी मौसम विभाग के द्वारा। आज अधिकतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रह सकता है और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने की संभावना है। और शगुन, कल थोड़ी सी धूप निकली थी तो दिल्ली के लोगों को राहत मिली थी।
It was sunny yesterday, right?
और जो कहते हैं ना, हाड़ कंपाने वाली सर्दी, उसका दौर जारी है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जिसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।
सो इट्स इम्पेरेटिव दैट पीपल मस्ट ड्रेस अप, लाइक लेयर अप,
एग्जैक्टली,
बाय विच आई मीन वेयरिंग गुड वार्मर्स इनसाइड एंड देन स्वेटर्स, कोट्स, ओवरकोट्स, राइट, लाइक दैट।
जब भी आप घर से निकले तो थोड़ा सा सर्दी को लेकर के सावधान रहे। उधर मुंबई में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोलकाता में सुबह हल्की धुंध और दिन में आसमान साफ रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास जाने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और शगुन, दक्षिण में तो उतनी सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर तो कम हो ही जाते हैं सर्दियों के सीजन में, तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या बरसात और क्या टेम्परेचर रहने वाला है?
राइट, एंड वेल देवेंद्र, आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई अगेन। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद हैवी रेन देयर, एंड द मिनिमम टेम्परेचर इट वाज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 degrees.
जी, मुझे लगता है कि सिर्फ चेन्नई में ही बारिश हो रही, बाकी देश में और किसी मेट्रो सिटी में बरसात नहीं है.
That is true. Bengaluru is expected to have mist and the minimum temperature was 16 degrees Celsius. Maximum will be around 26 degrees. Hyderabad, again, it is expected to have fog mist, Devendra, in the morning and then partly cloudy sky later. Minimum temperature was 15 degrees Celsius and maximum will be around 26 degrees Celsius. Yes, heavy rain. Only in Chennai it is expected there.
जी, और सर्दियों की बात हम कर रहे थे तो सर्दियों का पीक समय चल रहा है, तो बिल्कुल आपने सही कहा था कि जब सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े पहने और बहुत ही सावधानी रखें, और इसीलिए स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ाया भी जा रहा है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें कड़ाके की ठंड से.
राइट.
जी, आगे बढ़ते हैं और इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं अपने श्रोताओं के लिए. आज 11 जनवरी 2026 है. आज ही के दिन 1569 में इंग्लैंड में पहली बार लॉटरी का शुभारंभ किया गया था, और 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी.
सो देवेंद्र, इन 1787 टाइटेनिया एंड ओबरॉन विच आर मून्स ऑफ यूरेनस, दे वर डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल.
जी,
इन 1838 फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेलीग्राफ मैसेज, इट वाज सेंट यूजिंग डॉट्स and dashes and at Speedwell Ironworks in Morristown, New Jersey by Samuel Morse and Alfred Weil.
जी.
In 1922, insulin. It was first used on humans when Frederick Banting injected 14-year-old Leonard Thompson to treat his diabetes.
जी, और 1923 में प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के विरोध के बावजूद फ्रांस और बेल्जियम के सैनिकों ने जर्मनी के रूर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था.
इन 1935 एमिलिया ईयरहार्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट सोलो फ्लाइट फ्रॉम हवाई टू कैलिफोर्निया.
जी, और 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कुआलालंपुर पर अधिकार आज के दिन किया था, और 1943 में ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस ले लिया था.
Devendra, in the year 1949, first network TV broadcasted Connect East Coast and Midwest.
जी, 1955 में भारत के अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ, और 1972 में आज के दिन पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश किया गया था.
In 1989, 140 nations agreed to ban chemical weapons. In 1985, now first Rock in Rio music festival it began. In 2016, Barcelona and Argentina forward Lionel Messi, well, he won his record 5th FIFA Ballon d'Or award. In 2024 now, huge ancient city discovered in the Amazon in Upano area of eastern Ecuador, capable of supporting 10,000 people with sophisticated roads there.
जी, और आज 11 जनवरी है, और आज ही के दिन से भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है. प्रत्येक वर्ष 11 से 17 जनवरी के बीच ये सप्ताह मनाया जाता है, और इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है. सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से शगुन ये पता चलता है कि लगभग 78% सड़क दुर्घटनाएं चालकों की गलती से होती हैं.
How unfortunate.
जी, और इसके पीछे शराब या मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना, वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में लोगों का सवार होना, वाहनों की अत्यधिक रफ्तार या चालक का थका हुआ होना जिसमें कभी कभी नींद भी आ जाती है.
Right, which can be easily avoided, right? Micro sleep.
अवॉइड किया जा सकता
yes.
है, तो एक बड़ी संख्या दुर्घटना जो दुर्घटना का प्रतिशत है वो कम हो सकता है.
राइट, रोड सेफ्टी शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी.
जी, और अब स्मरण उन महान व्यक्तियों का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है. जी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में साहित्य रसिकों के लिए रचनाएं करने वाले सुप्रसिद्ध कवियों में शुमार श्रीधर पाठक की आज जयंती है. वे स्वदेश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और समाज सुधार की भावनाओं के कवि थे. हिंदी साहित्य सम्मेलन के पांचवें अधिवेशन जो कि 1915 में लखनऊ में हुआ था उसके सभापति भी बने थे. उन्हें कवि भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था. श्रीधर पाठक की ब्रजभाषा सहज और निराडंबर है. परंपरागत रूढ़ शब्दावली का प्रयोग उन्होंने प्रायः नहीं किया है. इसी क्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक पंडित राम चतुर जी को आज याद कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है. भारतीय संगीत के सर्वोत्तम स्वरूप की साधना करते हुए उन्होंने विभिन्न देशों में संगीत प्रेमियों के लिए प्रस्तुतियां दी. मल्लिक जी ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे. रामचतुर मणिकजन में 5 अक्टूबर 1902 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राजित राम था, जो कि दरभंगा महाराज के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ये माना जाता है कि पंडित रामचतुर मल्लिक के पूर्वज राजस्थान से बिहार आए और संगीत में दरभंगा घराने की नींव रखी गई।
So, listeners, today we're also remembering V. Madhusudan Rao, director-producer. Well, he's popularly known as Victory Madhusudan Rao. So, he directed nearly 70 films, including musical hits such as Annapurna, Aradhana as well, in 1962. So, in 1965, he was awarded the National Film Award for Best Feature Film in Telugu for Antastulu.
Ji. हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और कवि दूधनाथ सिंह की आज जयंती है। उन्हें भी हम नमन करते हैं। दूधनाथ सिंह ने अपनी कहानियों के माध्यम से 60-वीं भारत के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं मानसिक सभी क्षेत्रों में उत्पन्न विसंगतियों को चुनौती दी। दूधनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में 17 अक्टूबर 1936 को हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए करने के पश्चात कुछ दिनों तक कोलकाता में अध्यापन किया और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापन करते हुए हिंदी की सेवा की। उनके प्रमुख उपन्यासों में आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो अंधकारम है, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, प्रेम कथा का अंत, न कोई उनके कहानी संग्रह हैं। संस्मरण में है लौट आ उधार और साक्षात्कार कहा सुनी। साहित्य साधक दूधनाथ सिंह को भारतेंदु सम्मान, शरद जोशी स्मृति सम्मान, कथाक्रम सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। 11 जनवरी 2018 को उनका निधन हुआ।
Listeners, we are also remembering Theodore Schwann, physiologist who founded modern histology by defining the cell as the basic unit of animal structure. He was co-founder with Matthias Jacob of the cell theory. He conducted a number of experiments in which he tried to make an objective determination of the force of muscle contraction, and his new methods made him a pioneer of neurophysiology and quantitative physiology.
Ji. क्रिकेट जगत के मिस्टर भरोसेमंद, जिसने इंग्लिश में मिस्टर डिपेंडेबल भी कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल शरद द्रविड़ की बात हम कर रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन है। 11 जनवरी 1973 को उनका जन्म हुआ। अक्टूबर 2005 से सितंबर 2007 के बीच वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। 16 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व करते रहने के बाद उन्होंने वर्ष 2012 मार्च में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। 1999 के विश्व कप में वे 461 रनों के स्कोर के साथ रन बनाने वालों में अग्रणी रहे।
राय देवेंद्र, द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, द लेजेंड हु मेड टेस्ट क्रिकेट गॉर्जियस टू वॉच एवरी टाइम ही प्लेड, वेल राहुल द्रविड़ द क्रिकेटर, ही इज कंसीडर्ड बाय मेनी टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिज गेम द गेम एंड ड्यूरिंग हिज करियर ही वाज आल्सो अ विकेट कीपर एंड एन ओकेजनल बोलर एज वेल।
और एक बात और कि क्रिकेट खेलना बंद करने के बाद भी उन्होंने भारतीय क्रिकेट की अलग अलग रूपों में सेवा की। उनकी कुछ बातें हैं, क्यों ना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
Not been much of a statistics man, and you know, sort of you do realize that I think 4-5 months after I've sort of finished, you sort of don't remember the runs so much as the memories. I think you remember some of the great victories that you've had, some of the times in the dressing room that you've spent, you know, with teammates.
और भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रविंद्र कृष्णन रैना का भी आज जन्मदिन है। उन्होंने ITF महिला सर्किट में 8 एकल सिंगल्स और 14 डबल्स खिताब जीते। अप्रैल 2018 में उन्होंने सिंगल्स रैंकिंग के शीर्ष 200 में प्रवेश किया। अंकिता रैना ने 2012 में नई दिल्ली में पहला प्रोफेशनल सिंगल्स खिताब अपने नाम किया और डबल्स में 3 खिताब जीते। उन्होंने 2018 के दौरान निरुपमा संजीव, सानिया मिर्जा, शिखा ओबेरॉय और सुनीता राव के बाद महिला सिंगल्स रैंकिंग में शीर्ष 200 में जगह बनाई थी।
Well, yes, in 2016 South Asian Games, she won gold medals in the women's singles and mixed doubles events. Well, today, Naomi Judd, country music singer and actress, we are remembering her today, and she and her daughter Winona formed the duo known as the Judds. The song which I have picked for our listeners, we have picked for our listeners, this is I Saw the Light.
और इसके साथ ही आज का न्यूज मैगजीन यहीं संपन्न करने की अपने श्रोताओं से चाहेंगे अनुमति, लेकिन अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।